ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। कांग्रेस संसदीय दल के नेता के लिए पार्टी सभापति शेर बहादुर देववा और महामंत्री गगन थापा ने दर्ज कराई उम्मीदवारी। कल सुबह 8 बजे से 10 बजे तक होगा मतदान। नेकपा एमाले संसदीय दल के नेता में पार्टी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुए चयन। वहीं सांसदों के शपथ के बाद ही संसदीय दल के नेता का चुनाव करने का नेकपा माओवादी ने लिया निर्णय। ज्येष्ठ सांसद पशुपति शमशेर जबरा परसों दिलाएंगे नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यों को शपथ। और पाकिस्तान के बन्नू जिले में काउंटर टेररिज्म सेंटर पर कब्जा करने वाले टीटीपी के 33 आतंकियों को पाक आर्मी ने मार गिराया। अब समाचार विस्तार से। नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के नेता के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा और पार्टी महामंत्री गगन कुमार थापा ने उम्मीदवारी दी है। सभापति देउवा के प्रस्तावक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल और समर्थक पार्टी के उपसभापति पूर्ण बहादुर खड़का है। इसी तरह महामंत्री गगन कुमार थापा के लिए डॉ शेखर कोरला प्रस्तावक है, जबकि उपसभापति धनराज गुरुंग और महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा समर्थक है। बता दें कि दल के नेता का चुनाव बुधवार सुबह 8 बजे से 10 बजे तक सिंह दरबार स्थित संसदीय दल के कार्यालय परिसर में होगा। नेकपा एमाले ने संसदीय दल के नेता में पार्टी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को चयन किया है। कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान में आज हुई संसदीय दल की बैठक ने अध्यक्ष ओली को दल के नेता के रूप में चयन किया। ये जानकारी एमाले केंद्रीय कार्यालय के सचिव डॉ भीष्म अधिकारी ने दी। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा है कि शांति और समृद्धि के लिए अभियान एमाले जारी रखेगी, चाहे सरकार में हो या विपक्ष में हो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान में आज आयोजित बैठक में अध्यक्ष ओली ने वादा किया कि नागरिक सम्मान और सामाजिक स्थिरता के पक्ष में सक्रिय भूमिका के साथ एमाले अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगी। अध्यक्ष ओली ने पार्टी के निर्णय नीति अनुशासन आदेश अनुसार आगे बढ़ने के दृढ़ संकल्प के साथ काम करने का नवनिर्वाचित सांसदों को निर्देश किया। प्रतिनिधि सभा के सांसदों के शपथ के बाद ही संसदीय दल के नेता का चुनाव करने का नेकपा माओवादी केंद्र ने निर्णय लिया है। इस बात की जानकारी माओवादी केंद्र ने दी। ज्येष्ठ सांसद पशुपति शमशेर जबरा परसों पूछ सात गति नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। संसद सचिवालय के सहायक प्रवक्ता दशरथ धमाल के अनुसार सांसद जबरा 81 साल 10 दिन के हैं, इसलिए उन्हें ज्येष्ठ सांसद बनाया गया है। ज्येष्ठ सांसद की हैसियत से सांसद जबरा कल दोपहर 1 बजे राष्ट्रपति समक्ष पहले खुद शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद परसों संसद भवन में प्रतिनिधि सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी समक्ष नेपाल के लिए संयुक्त अरब इमिरेट्स के आवासीय राजदूत तथा संयुक्त गणतंत्र तांजानिया और गणतंत्र सर्बिया के गैर आवासीय राजदूतों ने अपने अपने ओहदे का प्रमाण पत्र पेश किया। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आज आयोजित अलग अलग विशेष समारोह में इन देशों के राजदूतों ने अपने अपने ओहदे का प्रमाण पत्र पेश किया। ये बात राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता सागर आचार्य द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित है। इस वर्ष का मानवाधिकार पुरस्कार वरिष्ठ मानवाधिकारवादी प्राध्यापक डॉ कपिल मानश्रेष्ठ ने प्राप्त किया है। इसी तरह संस्था की ओर से मानव सेवा आश्रम को इस साल का मानवाधिकार पुरस्कार मिला है। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय के अनुसार पुरस्कार की राशि 1,11,111 रूपये है। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय में आज आयोजित एक समारोह के दौरान कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ने वरिष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्ता प्रोफेसर डॉ कपिल मानश्रेष्ठ एवं संस्था की ओर से मानव सेवा आश्रम को पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर कानून मंत्री कार्की ने कहा कि चूंकि मानवाधिकारों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना राज्य की जिम्मेदारी है, नेपाल सरकार उस दिशा में सावधानी से काम कर रही है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। शहरी विकास मंत्री मिणी चौधरी ने कहा है कि बंचरे डाड़ा की जनता के साथ अन्याय नहीं होगा। आज बंचरे डाड़ा का स्थलगत निरीक्षण करने के दौरान मंत्री चौधरी ने कहा कि स्थानीय वासियों की जायज मांगों पर ध्यान दिया जाएगा और अधिकांश मांगे पूरी होने की स्थिति में है। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शेर बहादुर कुंवर ने अनौपचारिक स्वरोजगार और वैदेशिक क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि सार्वजनिक की। आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री कुंवर ने बीते मार्गशीर्ष 25 गते मंत्रालय द्वारा स्वीकृत अनौपचारिक क्षेत्र में रहे श्रमिकों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि 2079 और वैदेशिक रोजगार में रहे श्रमिकों और विदेशों में रह रहे स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए योगदान पर आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि 2079 साझा की। नेपाल के ड्रग नियामक ने 16 भारतीय दवाई कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इनमें बाबा रामदेव की कंपनी दिव्य फार्मेसी भी शामिल है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नियामक ने कहा है कि ये कंपनियां विश्व स्वास्थ्य संगठन के उत्पादन स्टैंडर्ड का पालन करने में विफल रही है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिस जारी कर नेपाल के लोकल एजेंट जो कि ये दवाइयां सप्लाई करते हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से इन्हें वापस लेने के लिए कहा है। नोटिस के मुताबिक इन दवाइयों का नेपाल में आयात और वितरण नहीं किया जा सकता। सरकारी वकीलों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन इसी पूस 8 गति से 10 गति तक काठमांडू में होने जा रहा है। अटर्नी जनरल के कार्यालय के अनुसार आपराधिक न्याय की प्रभावशीलता कानून के शासन को सुनिश्चित करना के नारे के साथ होने वाले इस सम्मेलन में देश भर के 465 सरकारी वकीलों संबंधित निकाय के कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों भाग ले रहे हैं। कार्यालय के अनुसार सम्मेलन का उद्देश्य मुलों की संहिता सहित नए कानूनों के क्रियान्वयन की स्थिति और क्रियान्वयन में देखी गई कठिनाइयों और चुनौतियों के आधार पर सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करना है। चितवन राष्ट्रीय निकुंज ने हिंसक जानवरों की पहचान के लिए मेघौली क्षेत्र से गोलाघाट क्षेत्र तक कैमरा टैपिंग का काम शुरू किया है। ये जानकारी निकुंज के सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारी ने दी। बता दें कि पूस 2 गते भरतपुर महानगर पालिका वार्ड नंबर 28 अंद्रौली की महिला पर जंगली हाथी ने आक्रमण किया था। इस घटना के बाद इस क्षेत्र में कैमरे रखे गए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के बन्नू जिले में काउंटर टेररिज्म सेंटर सीटीडी पर कब्जा करने वाले तहरीक ए तालिबान टीटीपी के 33 आतंकियों को फौज ने मार गिराया है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने संसद को ये जानकारी दी है। ऑपरेशन में 2 कमांडरों भी मारे गए हैं। करीब 3 दिन से टीटीपी के आतंकी एक मेजर समेत 4 फौजियों को बंधक बनाए हुए थे। पाकिस्तान ने इस मसले को सुलझाने के लिए 16 मौलवियों की एक टीम अफगानिस्तान बातचीत के लिए भेजी थी। इनकी कोशिश ये थी कि अफगान तालिबान को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो टीटीपी आतंकियों को सरेंडर के लिए तैयार करे। ये कोशिश नाकाम साबित हुई। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कांग्रेस संसदीय दल के नेता के लिए पार्टी सभापति शेर बहादुर देववा और महामंत्री गगन कुमार थापा ने दर्ज कराई उम्मीदवारी। कल सुबह 8 बजे से 10 बजे तक होगा मतदान। नेकपा एमाले संसदीय दल के नेता में पार्टी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुए चयन। वहीं सांसदों के शपथ के बाद ही संसदीय दल के नेता का चुनाव करने का नेकपा माओवादी केन्द्र का निर्णय। ज्येष्ठ सांसद पशुपति शमशेर जबरा परसों दिलाएंगे नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यों को शपथ और पाकिस्तान के बन्नू तीनों जिले में काउंटर टेररिज्म सेंटर पर कब्जा करने वाले टीटीपी के 33 आतंकियों को पाक आर्मी ने मार गिराया। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।